मेरे युवा दोस्तों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आप सबसे कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बातें करूंगा, कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दो जो सामान्य सी ही घटनाएं हैं लेकिन हमें जाननी चाहिए, उन्हें हम जान लेते हैं। अब अगर मैं कहूंगा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना साहब होंगे तो ये सामान्य घटना नहीं है। लेकिन मैंने फिर सामान्य घटना क्यों कहा? सामान्य घटना इसलिए कहा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में अब इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सच पूछे तो अब हम ज्ञान के उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि दूसरे भी जो एग्जामिनेशन होते हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज वगैरह, तो वहां भी अब इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सामान्य घटना, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना एक सामान्य बात नहीं है। इसलिए अगर आप लोगों में से कुछ को ये लगे कि ये सामान्य घटना कैसे हो गई, तो इसीलिए मैं ये सफाई दे रहा हूं कि मैं अगर सामान्य, असामान्य, महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण घटना कह रहा हूं तो उसका संबंध सिर्फ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से है, किसी घटना विशेष से ही है नहीं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें जो हमारी न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक है, बेसिक, आप कह लीजिए कि बेसिक नेसेसिटी इंडेक्स, इसके बारे में दिया हुआ है। और मुझे लगता है कि यह जो आर्टिकल है एक अच्छा सा आर्टिकल है। आपको ध्यान होगा कि जो हमारी इस बार की आर्थिक समीक्षा आई थी, उस आर्थिक समीक्षा में जो हमारे आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने न्यूनतम जरूरत सूचकांक, न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक, बुनियादी आवश्यकता सूचकांक, इस तरह से अलग अलग अभी उसके नाम आ रहे हैं, देखते हैं कि कौन सा नाम एस्टैब्लिश हो पाता है, के तहत एक नए सूचकांक को शुरू करने की बात कही थी। और उसकी बकायदे उन्होंने संकल्पना पेश की और उसके आधार पर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ राज्यों के नाम भी बताए थे कि कहां कहां क्या स्थिति है, स्थितियां हैं। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, खासकर भारत के संदर्भ में और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के संदर्भ में। विशेष रूप से यह आर्टिकल मुझे बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। इसमें बकायदे बताए गए हैं कि जो हमारे न्यूनतम सूचकांक है, न्यूनतम आवश्यकता सूचकांक, उसके तहत कौन से 5 प्रमुख तत्व लिए गए हैं और फिर उन 5 प्रमुख तत्वों की डिटेल्स भी दी गई है। उदाहरण के तौर पर जैसे बताया गया जल, पानी, राइट, तो जो पेय जल है उसके बारे में फिर डिटेल दी गई है कि उनका परीक्षण, यानी कि पानी का परीक्षण किन मानकों पर किया जाएगा, उसकी कसौटियां क्या होंगी, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे। तो उसमें बकायदे है कि जो पानी आप पी रहे हैं उसका स्रोत क्या है, यानी कि टैप वाटर है, कुएं का पानी है, तालाब का पानी है, नदी का पानी है, हैंडपंप का पानी है, उसका स्रोत क्या है। इसके बाद फिर जहां से आप पानी ला करके पी रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि आपके निवास से पानी लाने की दूरी कितनी है, और फिर पानी आप तक पहुंच कैसे रहा है। ये 3 पानी के मानक हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत अच्छी जानकारियां इस आर्टिकल के तहत मिलेंगी। खासकर मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इस आर्टिकल को एक सामान्य आर्टिकल समझ करके और किनारे कर दें, और बेहतर होगा कि इस पर एक छोटा सा नोट भी तैयार कर लें। ये आपके बहुत काम आएगा, ऐसे राइटिंग में काम आ सकता है, और यहां तक कि मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कई प्रश्नों के उत्तर देने में इससे आपको मदद मिलेगी। देखिए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेशली मेन एग्जामिनेशन में यह कला बहुत काम आती है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है, मैं इसे इंफॉर्मेशन ही कहूंगा, नॉलेज नहीं कह रहा, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप उन इंफॉर्मेशन का उपयोग कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, यह एक प्रकार की कलाकारी है, बहुत ही बेहतरीन किस्म की कलाकारी। इस कलाकारी में आप जितने सिद्धस्त होंगे, मान करके चलिए कि मेन एग्जामिनेशन में आप उतने अधिक नंबर अपने आप के लिए बटोर सकेंगे। मैं जानबूझकर के इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, बटोर सकेंगे। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। दैनिक जागरण का मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें फासीवादी मानसिकता वाले बुद्धिजीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये लेख का पूरा शीर्षक भी है, फासीवादी मानसिकता वाले बुद्धिजीवी। तो जैसे ही मैंने फासीवाद शब्द पढ़ा, मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत जो बारीक अंतर वाले जो शब्द हैं उनके एग्जैक्ट अर्थ नहीं समझ पाते। कई बार मेरे पास इस तरह के मेल भी आते हैं कि सर इसके बारे में हमें बताइए। जैसे यहां फासीवाद शब्द दिया हुआ है, इसके बाद आपको कहीं नाजीवाद शब्द भी पढ़ने को मिल जाएगा, फिर आपको बकायदे नक्सलवाद पर तो अभी हम लोग बात ही कर रहे हैं ये भी पढ़ने को मिल जाएगा, फिर आपको वामपंथी बुद्धिजीवी ये भी पढ़ने को मिल जाएगा, आपको कहीं कहीं प्रगतिशील पढ़ने को मिल जाएगा, यानी कि ये बड़े प्रोग्रेसिव अप्रोच के लोग हैं, ये बड़ा प्रगतिशील व्यक्ति है, प्रगतिवादी विचारों का है, इस तरह के भी आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये लगभग लगभग एक जैसे ही प्रजाति के मालूम पड़ते हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं। देखिए इसमें आप दो को तो बिल्कुल निकाल दीजिए, जो फासीवाद है और जो नाजीवाद है ये अलग हैं, लेकिन ये जो अपना स्रोत ढूंढते हैं अपने विचारों के लिए दर्शन शास्त्र या जो जड़ ढूंढते हैं वो जाकर के बकायदे मार्क्सवाद में ढूंढ लेते हैं, और ठीक यही स्थिति नक्सलवाद और वामपंथियों के साथ होती है। इसके बारे में मैंने कल आपसे थोड़ी सी चर्चा की थी, शायद आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि नक्सलवाद की तो जो विचारधारा ही है वो किस तरह से सीधे सीधे मार्क्सवाद से ली हुई है। अब ये बात अलग है कि मार्क्सवाद है, फिर वो माओवाद है, फिर ये लेनिनवाद है, उससे उन्होंने किस तरीके से लेकर के और उसे अपने ढंग से मॉडिफाई कर दिया है, वो एक अलग मुद्दा है। फिर जब हम प्रगतिशील की बात करते हैं तो फिर वहां यही बात दिखाई देने लगी, क्योंकि मार्क्सवाद अपने आप में एक प्रगतिशील विचार है लेकिन दोनों एक ही नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियां देने जा रहा हूं, ताकि यदि आप एग्जामिनेशन में इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि पर्याय समझ करके आप कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठें, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझता है, और यदि आपने अपने इस तरह की अज्ञानता का परिचय दे दिया तो आप मान करके चलिए कि ये बहुत बड़ा नुकसान आप उठाएंगे। तो ये मान करके चलिए कि आप ऐसा करके अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए दो शब्द हैं जो नाजीवाद और फासीवाद, बेसिकली ये जो दोनों शब्द हैं एक प्रकार के डिक्टेटरशिप को शो करते हैं, ये तानाशाही व्यवस्था को शो करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान इटली में मुसोलिनी हुआ करते थे, आपको मालूम है, और जर्मनी में हिटलर हुआ करते थे, है ना, और ये दोनों के दोनों अपने अपने समय के तानाशाह रहे हैं, है ना, हत्या, हिंसा, अपनी बात को जबरदस्ती मनवाना, लोगों को जेल में डाल देना, हत्याएं करवा देना, इनके लिए बहुत आम सी बात थी। तो ये शासक हुए और इनकी पार्टी का नाम यही था, फैसिस्ट और नाजी पार्टियां, इनकी जो पार्टियां थी, जो ग्रुप बने हुए थे, इनका नाम यही था। तो जो राजनीतिक दल हिंसा का सहारा लेते हैं, और राजनीतिक दल भी ना हो, जो हिंसा के आदर्श पर विश्वास करते हैं, उन्हें चाहे आप नाजीवाद कह दें या फासीवाद कह दें, दोनों बिल्कुल एक ही हैं। तो नाजीवाद और फासीवाद ये दोनों पर्यायवाची हैं, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं, और आप देखिए कि परिणाम क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिटलर है उसने तो आत्महत्या ही की, और मुसोलिनी की हत्या की गई, फांसी पर चढ़ाया गया, दोनों का ये अंजाम हुआ। तो ये दोनों एक प्रकार के डिक्टेटर्स हैं। जो नक्सलवाद है इसके बारे में कल हम लोग बात कर चुके हैं, तो इसमें जो नक्सल शब्द है ये स्थानवाचक है, पश्चिम बंगाल में एक स्थान है नक्सलवाड़ी, है ना, वहां सब बातचीत हुई और इसके बाद फिर ये नक्सलवाद आंदोलन आगे चला, तो उस स्थान के नाम पर इसे नक्सलवाद कह दिया जाता है, लेकिन इसकी जो विचारधारा है उसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं, यहां दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए जो प्रगतिशील है, जो प्रोग्रेसिव शब्द है, प्रोग्रेसिव यानी कि हमारे पूरे की पूरी दुनिया में जो मध्यकाल का समय रहा है उसके अपने मूल्य थे जो खासकर सामंतवादी थे, ये पूरी की पूरी दुनिया में लगभग रहा है, और जो सामंतवादी मूल्य हैं, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि हमारे पास उत्पादन के जो साधन होंगे तो उत्पादन के साधन और जो उत्पादन करने वाला है, इन दोनों के बीच के संबंधों से बहुत सारी बातों का निर्धारण होता है। तो जो मेडिवल पीरियड रहा है वो कृषि व्यवस्था का पीरियड रहा है ना, तो उस समय जमींदार होते थे, उस तरह के उत्पादन की पद्धतियां थी, तो वहां से जो सामाजिक मूल्य बने वो मध्यकालीन मूल्य कहलाते हैं, जैसे महिलाओं का स्थान समाज में निम्न का होगा, उनके उन्हें शिक्षा की जरूरत नहीं है, परंपराओं पर बहुत ज़्यादा जोर होगा, अंधविश्वासी समाज होगा, शोषण किया जाएगा, कुछ लोग विलासितापूर्ण जीवन जिएंगे और विलासिता को एक प्रकार से समाज के कुछ वर्गों के लिए एक उनकी पहचान बना दी जाएगी, राइट। इसके बाद इसके विरोध में जो मूल्य आए हैं उन्हें हम कहते हैं प्रगतिशील मूल्य। जैसे नहीं, महिलाओं का भी समाज में बराबर स्थान है, उन्हें भी बकायदे शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए, सभी मनुष्य समान हैं। लोकतंत्र की विचारधारा को भी आप कह सकते हैं कि ये प्रगतिशील मूल्य है। खासकर फ्रांस की क्रांति के बाद से ये चीजें बहुत ज्यादा हुई, स्वतंत्रता, समानता, जो मनुष्य है सभी मनुष्य समान हैं, जाति का कोई आधार नहीं है, हमें अधिक से अधिक तार्किक होना चाहिए, अंधविश्वास से अपने आप को बचाकर रखना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें की जाती हैं तो वो हो जाती हैं प्रगतिवादी मूल्य या प्रगतिशील विचारधारा। इसके बाद है वामपंथ। वामपंथ का सीधे सीधे संबंध मार्क्सवाद से है। अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं लेफ्टिस्ट, लेफ्ट, राइटिस्ट। जब राइटिस्ट कहते हैं तो वो राजनीतिक दल या वह विचारधारा जो इन मध्यकालीन मूल्यों का कहीं ना कहीं समर्थन करती है, और वामपंथी जब हम कहते हैं तो जो प्रगतिशील मूल्यों का समर्थन करते हैं सामान्यतया, तो उन्हें हम फिर हम वामपंथी कह देते हैं, लेफ्टिस्ट कह देते हैं। तो दोस्तों, खासकर आज इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि नहीं, इनमें जो थोड़ा सा अंतर है उसे मुझे आप सबके सामने स्पष्ट करना चाहिए। दोस्तों, न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से एक मित्र का नाम है श्रुति सुमन, आपके प्रति बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।